ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान के जो महान भक्त हैं उनका जो मनोभाव है वो किस प्रकार से होता है। तो भगवान सबसे अधिक किसका गुणगान करते हैं तो वो अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान कई स्थानों में अपने भक्तों के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो भगवान गीता में 12वें अध्याय में भी वर्णन करते हैं, पूरा अध्याय एक प्रकार से वहां वो भगवान के भक्तों के गुणों का वर्णन है और उसको कहा जाता है भक्त्या अष्टकम्। भक्तों का गुणों का वर्णन 12वें अध्याय में किया है इसलिए वो भी एक प्रकार का अष्टकम है। तो ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं विदुर जब उद्धव को मिले थे और उद्धव को मिलने के बाद उद्धव ने कहा कि हे विदुर जी, जब भगवान कृष्ण इस संसार से अप्रकट होने वाले थे तो सबसे आखिरी में जाने से पूर्व वो अपने दो भक्तों को मिले और वो कौन थे? एक थे उद्धव और दूसरे थे मैत्रेय मुनि। ये दोनों को भगवान ने विशेष ज्ञान प्रदान किया और अंतिम में इन दोनों को भक्तों को मिले और भगवान उन दोनों से बात करते करते अपने एक भक्त का स्मरण करने लगे। किनका स्मरण किया उन्होंने? विदुर का स्मरण किया। किसका? विदुर का। तो विदुर भगवान के महान भक्त थे तो ऐसे विदुर का भगवान ने स्मरण किया और उद्धव को भगवान ने आदेश दिया कि तुम बद्रिक आश्रम में जाओ और वहां मेरा भगवत भजन करो, वहां रहकर मेरी भक्ति करो। और जब ये उद्धव जा ही रहे थे बद्रिक आश्रम की ओर तो रास्ते में उनको विदुर मिलते हैं, क्योंकि विदुर भी उस समय में क्या कर रहे थे? तीर्थ यात्रा कर रहे थे। भारत वर्ष में अलग अलग तीर्थों में वो भ्रमण कर रहे थे। तो ऐसे विदुर जब उद्धव से मिलते हैं तो उद्धव कहते हैं कि हे विदुर जी, आप क्या कीजिए, मुझसे तो नहीं लेकिन आप भगवान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, भगवान ने क्या उपदेश दिया वो आप जाओ और मैत्रेय मुनि से क्या करो, सुनो, उनसे जिज्ञासा करो। तो ऐसे विदुर तो भगवान के महान भक्त हैं लेकिन विदुर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो उनके लिए पर्सनल कोई आवश्यकता नहीं है उन प्रश्नों की। हाँ, लेकिन किसके लिए वो प्रश्न पूछते हैं? सर्वसामान्य प्रश्न, ताकि उन प्रश्नों के द्वारा, उस उत्तर के द्वारा जो बाकी जनमानस है उनको लाभ मिले। तो इसी प्रकार से एक भक्त सदैव केवल अपने लिए कार्यरत नहीं रहता वो, हाँ वो अपने लिए कार्यरत नहीं रहता, बल्कि वो हमेशा चिंतन करता है कि दूसरों का हित कैसे हो। इसलिए इस संसार में कई शुभ चिंतक हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए कोई शुभ चिंतक सबका नहीं हो सकता। हम सब शुभ चिंतक होते हैं अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, या जो संबंध है, जो हमें कुछ लेन देन हमसे करता है, हमारे स्वार्थ की पूर्ति करता है, इंद्रिय तृप्ति में हेल्प करता है, उसी से हम क्या रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं और उसके वेल विशर होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जैसे महान भक्त वो केवल एक कम्युनिटी के नहीं है, वो सारे संसार के जीवों के वेल विशर है, शुभ चिंतक है, और कुछ समय के लिए नहीं। हम किसी के शुभ चिंतक तब तक होते हैं जब तक वो हमारी डिमांड्स फुलफिल करता है। कुछ सालों के बाद, महीनों के बाद हम क्या करते हैं, उससे नाता तोड़ देते हैं, संबंध बंद, शुभ चिंतक नहीं बने रहते हम उसके। तो लेकिन भगवान के महान भक्त सब समय के लिए और सब जीवों के हमेशा शुभ चिंतक हैं। इसलिए प्रभुपाद जब पत्र लिखते थे अपने शिष्यों को, तो उसके आखिरी में क्या लिखा करते थे, यूर एवर वेल विशर, आपका हमेशा शुभ चिंतक। तो इसी कारण से देवोवती भी कहती है, जब उन्होंने पूछा, देवोवती कहती कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं, लेकिन फिर भी मैं सबसे बड़ी अभागी स्त्री हूं, क्योंकि मेरा पति तो महाभागवत सबसे बड़ा भक्त और पुत्र साक्षात कृष्ण भगवान, लेकिन फिर भी मेरी समस्या क्या है, मैंने इसका लाभ नहीं उठाया। ऐसी देवोवती अपने पुत्र कपिल को कहती है कि मैं तो वास्तव में अवेलेबल थी सारी सुविधा, लेकिन फिर भी मैं अभागिनी हूं, क्यों? तो वो कहती कि मेरी जो इंद्रिया है वो बहुत अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण मैं ये लाभ उठा नहीं पाई, तो मुझे क्या करना चाहिए। कपिल देव को जब पूछती है तो कपिल देव उनको कहते हैं, आप क्या करो, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वही सूरदम सर्वदेही नाम, सारे जीवों के वो वास्तव में हित चिंतक है, शुभ चिंतक है। तो इसी प्रकार से शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि वास्तव में भगवान के भक्तों का जो हृदय है वो सारे जीवों के दुख से दुखी रहता है। जैसे इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे, वैष्णव का मतलब ही है पर दुखी दुखी, दूसरों के दुख से वो दुखी होता है, और जो वैष्णव नहीं है उसकी सिचुएशन कैसी है, पर दुखी सुखी। हम हमेशा ईर्ष्यावश जीवन यापन करते हैं अपने जीवन में, हमेशा देखते हैं कि वो ऊंचा आगे क्यों बढ़ रहा है, चाहे हम अपने ऑफिस में हो, घर में हो, रिलेटिव्स के बीच में हो, इस सब समय में हम एक ही चिंतित रहते हैं, और इसलिए तो दुखी हैं। हम दुखी अधिकतर इसी कारण से हैं कि जिन चीजों के सोच हमें नहीं करना चाहिए उसके बारे में अधिक सोचते रहते हैं, भगवान के बारे में अधिक चिंतन आदि नहीं करते। तो इसलिए जो भक्त का हृदय है उनकी सोच है वो बहुत बड़ी है, और ऐसे एक महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु के तो अनेक भक्त हैं, उनमें से एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव दत्त। क्या नाम था? वासुदेव दत्त। तो ऐसे विदुर जब उद्धव ने कहा कि मैं आपको आगे भेजता हूँ, मैत्रेय मुनि से आप शिक्षा ले लो, तो विदुर जी गए मैत्रेय मुनि के पास, गंगा के किनारे हरिद्वार में उनसे मिले, और विदुर जी जब मिले तो विदुर ने उनको एक प्रार्थना की। उन्होंने वास्तव में भक्त का क्या हृदय होता है उसके बारे में उन्होंने बोला। तो विदुर कहते हैं, जनश कृष्णाद विमुखश दैवात अधर्मशीलश सुदुखितश अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनश। तो इस श्लोक में बहुत सारी शिक्षा विदुर हमें दे रहे हैं। विदुर कह रहे हैं, सबसे पहले इस भौतिक संसार का जो जीवात्मा है उसकी उसका पतन कैसे होता है उसके बारे में वो बोल रहे हैं। वो कह रहे जनश कृष्णाद विमुखश दैवात, कि जो जन है, जो जीव है वो कृष्ण से विमुख हो जाता है। कृष्ण से विमुख का मतलब है कृष्ण के पास है खड़ा, लेकिन अपना मुंह कहाँ किया है? माया की ओर। सोचो हम टेंपल हॉल में जाते हैं और अल्टर के पास वहां राधा कृष्ण खड़े हैं, वहां जाते हैं लेकिन राधा कृष्ण को हम नहीं देखते, हम वहां खड़े होकर अपना मुंह कहाँ करते? पीछे करते हैं, भगवान की ओर पीठ करते हैं और हम वहां माया को देखते रहते हैं। तो इसलिए उसको विमुख कहा गया है। और दूसरा क्या होता है, एक है कृष्ण विमुख और एक है कृष्ण उन्मुख। कृष्ण उन्मुख मीन्स जो कृष्ण की ओर क्या कर रहा है, देख रहा है, जो दूर है लेकिन उनका उसका फेस कृष्ण की ओर है। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों है जीव के साथ? क्योंकि माया के मोह में आने के कारण, माया से भ्रमित होने के कारण जो जीव है कृष्ण से विमुख हो जाता है। और जैसे ही ये डिजायर उत्पन्न होती है उसके अंदर भोग करने की, तो वो एक चीज का सहारा लेता है अपने जीवन में, और वो क्या है? अधर्म, अधर्मशीलश। व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, जैसे उसके अंदर भोग करने की इच्छा आती है, चाहे वो भक्त बनने के बाद भी, हाँ, जब भोग करने की, इस संसार को भोगने की वृत्ति अत्यधिक उसके हृदय में जागृत होती है, तो वो सबसे पहले अधर्म का सहारा लेगा। हाँ, धीरे धीरे छोटे छोटे अधर्म करने लगेगा। और क्यों? क्योंकि वो अधर्म के द्वारा वो भोग करना चाहता है। धर्म के नियमों का पालन धीरे धीरे वो छोड़ देगा, वो सोचेगा अरे आज माला पूरी करने की आवश्यकता नहीं है, कल कर सकते हैं, आज प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं है, बाद में देखते हैं, अभी कृष्ण की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो अपने इंद्रियों के द्वारा भ्रमित होता है और इंद्रियों के माध्यम से एंजॉय करना चाहता है, और वो वास्तव में फिर मूर्ख कहलाता है। इसलिए गीता में भगवान दो बार बुद्धिमान व्यक्तियों का वर्णन करते हैं। पांचवें अध्याय में कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा दुख एव नव एवते अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। वहां कहते बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो इंद्रिय सुखों में आनंद नहीं लेता, उसमें रममान नहीं होता, उसको भगवान कहते बुद्धिमान है। पर इससे भी और थोड़ा बुद्धिमान, उससे भी बढ़कर बुद्धिमान कृष्ण दसवें अध्याय में कहते हैं, भगवान कहते आम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। वहां भी भगवान कहते बुधा है, बुद्धिमान है, कि वो व्यक्ति जानता है कि कृष्ण क्या है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के उत्पत्ति के कारण है, और ये जानकर उनकी प्रेममयी सेवा में लग जाता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और मूर्ख व्यक्ति क्या है? एक तो ये चीज को जानता नहीं, और दूसरा इंद्रियों को ही अपने सुख का साधन मान लेता है और इंद्रिय भोगों में लिप्त होता है। इसी कारण से वो कहते हैं माया के भ्रम के कारण, इच्छा भोग करने की इच्छा के कारण अधर्म में प्रवृत्त होता है, और अधर्म करने से क्या होगा? विदुर कहते हैं सुदुखितश, उसके जीवन में उसको दुख ही झेलना पड़ेगा, और ऐसा वैसा दुख नहीं, कैसे? सुदुखितश, बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा। तो इस संसार में अधिकतर जो जीव हैं वो इस प्रकार के हैं, जो अधर्म का सहारा लेते सुखी होने के लिए, लेकिन वास्तव में उनके जीवन में दुख ही दुख आता है। तो फिर वो कहते ऐसे जीवों के लिए सॉल्यूशन क्या है, वो कैसे इस माया के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं? तो विदुर कहते हैं अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनश। कहते कि फिर जनार्दनश, हाँ, जो जनार्दन, किसका नाम है जनार्दन? किसका है? कृष्ण का। तो ऐसे जनार्दन के अपने लोग हैं, भगवान के जो अपने लोग हैं, विदुर कहते हैं वो जो भक्त है वो क्या करते हैं? चरन्ति नूनम, वो सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। चरन्ति नूनम, क्यों भ्रमण करते हैं? अनुग्रहाय, दूसरों पर अपनी कृपा देने के लिए, दूसरों पर अपनी दया प्रदर्शित करने के लिए, किसके ऊपर? भूतानी, वो कहते भूतानी मीन्स जीवों के ऊपर। और इसी कारण से विदुर कहते हैं कि उन भक्तों को भव्यानी कहा गया है। भव्यानी मतलब कि जो सबसे बड़े परोपकारी है, भगवान के जो जनार्दन के भक्तों से बढ़कर इस संसार में समाज कल्याण करने वाले लोग उनसे बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे अधर्म में प्रवृत्त हुए भौतिक संसार में सड़ रहे जीवों पर अपनी कृपा का प्रदर्शन करके उनको उठाते हैं और किसके चरणों में रखते हैं? कृष्ण के चरणों में। इसी कारण से भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भक्तों से क्यों प्रीति करते हैं? क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो अधिकतर दूसरों के हित की इच्छा करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं सबका फादर हूं। तो फादर हमेशा देखता है कि उसके दुख, कई बच्चे हैं और कई उनसे दूर हो गए हैं, तो जो सही बालक है वो दूसरे अपने भाइयों को पकड़कर पिता के पास ले आते हैं। तो फादर की दृष्टि में वो जो उनके पुत्र हैं जो दूसरों को पकड़कर ला रहे हैं उनके चरणों में, वो अधिक प्रिय होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान या विदुर इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस संसार में जो भगवान के भक्त हैं, जो दूसरे जीवों को वास्तव में कृष्ण के शरणागत बनाते हैं, वो सबसे बड़े क्या है? दानी है, सबसे बड़े परोपकारी महात्मा है। तो इस प्रकार से ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के कई भक्त हुए हैं, लेकिन एक विशेष भक्त थे जिनका नाम क्या था, मैंने अभी बताया, वासुदेव दत्त। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कई सारे वासुदेव हैं। एक थे वासुदेव विप्र, उसके उनके ऊपर महाप्रभु ने कृपा की थी। लेकिन ये वासुदेव दत्त जिनके बारे में हम थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, थोड़ा समय है। तो चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, अब देखिए चैतन्य महाप्रभु के जीवन से शुरुआत होती है ये दया। उन्होंने संन्यास क्यों ग्रहण किया? अपने लिए नहीं, संन्यास उन्होंने ग्रहण किया अपनी मदर, अपनी युवा पत्नी को छोड़ा, त्याग कर दिया, केवल सारे जीवों पर दया का प्रदर्शन करने के लिए, सारे जीवों को कृष्ण भक्ति देने के लिए। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपना जो निजी धाम है नवदीप मायापुर, उसको छोड़ते हैं और जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जब वो निवास करने लगे कुछ साल, तो जो नवद्वीप के जो भक्त हैं वो हमेशा हर साल चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे यात्रा के लिए। जैसे हम यात्रा में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो वैसे ही नवद्वीप के भक्त भी जगन्नाथपुरी जाते थे। और जब पहली बार ये सारा ग्रुप गया नवद्वीप के भक्तों का जगन्नाथपुरी, तो वहां चैतन्य महाप्रभु से मिलने की उन सब की इच्छा थी। तो सारे चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए और चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में बैठे थे, तो एक एक भक्त उनके सामने दिखाई दिया। तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को देखकर ही क्या हो गए? आनंदित हो गए। दो चीजें हमारे साथ हो जानी चाहिए भक्तों को देखकर, एक तो आनंदित होना चाहिए। ये हमारी स्थिति क्या है, भक्तों को देखते ही हमें सर में हाथ लगाते हैं, कहां से आ गए, अभी कुछ ना कुछ पूछेंगे, कुछ ना कुछ सेवा में लगाएंगे, हाँ, तो हमेशा हम टेंशन महसूस करते हैं। तो जब ये एटीट्यूड आता है तो कृष्ण नाराज होते हैं। कौन नाराज होते हैं? वो डिवोटी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है सबसे, क्योंकि कृष्ण ये चीज को सहन नहीं कर पाते। वो जब वो देखते हैं कि मेरे भक्तों को देखकर, बल्कि शास्त्र कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, गंगारा परश हैले पछाते पावन, कि गंगा में बारंबार जाओ स्नान करो तब आप पवित्र हो गए, लेकिन दर्शने पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। अब भक्तों को देखने मात्र से आप क्या हो जाते हो? पवित्र हो जाते हो, पाप राशि आपके शरीर से गिरने लगते हैं पाप। तो हमारी स्थिति क्या है कि हम वंचित है या हम उससे भागते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो लेकिन इसके विपरीत है कि हमें आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए। पहली चीज, भक्तों को देख के ही आनंदित होना चाहिए। क्यों आनंदित होना चाहिए? क्योंकि उनको देखने से किसका स्मरण हो रहा है? हाँ, हमारा असली कोई हितेशी इस संसार में है, असली कोई पति पुत्र बांधव फ्रेंड रिलेटिव कोई है, हाँ, तो वो कौन जो हमें कृष्ण का स्मरण दिलाता है। हाँ, ये वास्तव में सबसे उन्नत कार्य है, जो हमें कृष्ण का स्मरण दिलाए वो हमारा हितेशी है, वो हमारा असली बंधु है, माता है, पिता है, गुरु है, मित्र है, पत्नी है। तो इस प्रकार से हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि उनको देखने मात्र से हमारे हमें कृष्ण का स्मरण होता है। और एक भक्त के जीवन में सबसे बड़ा लॉस है कि जब वो कृष्ण को भूलता है, और सबसे बड़ा लाभ क्या है, जब उसका कृष्ण स्मरण बढ़ता है। हाँ, ये दो चीजें हैं। तो भक्ति भी वैसी है, भक्ति में उन्नत भक्त वो है जिसका कृष्ण स्मरण अत्यधिक है, और जिसका कृष्ण स्मरण न्यूनाधिक बहुत कम है, ना के बराबर, उसे समझना चाहिए कि भक्ति में उन्नत नहीं है। तो हमें भी अपने जीवन से देख सकते कि क्या रोज इतने दिन जा रहे हैं, क्या मेरा कृष्ण का स्मरण मेरे जीवन में बढ़ रहा है। हाँ, आज या कल मेरा जीवन चल दिन गया, क्या कल आज हर रोज रात को सोने से पूर्व हमें सोचना चाहिए, बेड में जब हम तकिया में अपना सर रखते हैं तो सोचना चाहिए कि आज कितना मैंने कृष्ण का स्मरण किया, किस किस प्रकार से मैं कृष्ण का स्मरण किया कर पाई या कर पाया। हाँ, तो ये हमें सोचना चाहिए, नहीं तो हमने क्या किया, ये जो दिन है वो गवा दिया है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों को देखते थे तो उनको एक तो आनंद हो जाता था, और दूसरा उन भक्तों की प्रशंसा करना के लिए उनके जीवा में सदैव शब्द अवेलेबल होते थे, है ना। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, प्रशंसा, एप्रिशिएशन। जितना हम एप्रिशिएट करते हैं भगवान के भक्तों को, तो उतना ही क्या होते हैं, कृष्णा आनंदित होते हैं। ये संसार में देखो, हाँ, कोई माता पिता है, हाँ, और उनके साथ छोटा सा बालक है, वो बच्चे की कोई प्रशंसा करता है, बच्चे को जितना आनंद नहीं होता, कितना आनंद, उससे ज्यादा आनंद किसे होता है, माता पिता को होता है। तो उसी प्रकार से हमें भी भक्तों के समाज में एक दूसरे को एप्रिशिएट करना, या एक दूसरे की प्रशंसा, और जेन्युइन, ये नहीं कि खिल्ली उड़ा रहे हैं या मजाक उड़ाने की भावना से, नहीं। तो जब ये बढ़ता है तो वास्तव में फिर हमारे हृदय में अपराध करने की प्रवृत्ति स्थान नहीं रखेगी। अपराध करने की प्रवृत्ति, ये चीजें न होने के कारण, क्योंकि इस संसार में हम चाहते कि सब मेरी प्रशंसा करें। जब हम हर एक जो भक्त हैं उनके हर एक कार्य की प्रशंसा करते सदैव, तो कभी हम भक्तिमय जीवन में दुखी नहीं रहेंगे, और कभी अनुत्साहित नहीं होंगे, सदैव उत्साहित रहेंगे कृष्ण की सेवा करने के लिए और ये कृष्ण भक्ति का संपादन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये वासुदेव भक्त उनके सामने खड़ा है, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत जाते हैं और उनका आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते ही महाप्रभु की जीवा, जैसे हमें सोचो, यहाँ रसगुल्ला देखते ही हमारे जीवा में क्या आता है, रसगुल्ला तो छोड़े, इमली का नाम लेते ही पानी आ जाते, कितना शब्द में शक्ति है। या सांप, ये शब्द उच्चारण करने मात्र से हमें डर महसूस होता है, भौतिक शब्दों में इतना शक्ति है, तो आध्यात्मिकता में क्यों नहीं। तो वहां चैतन्य महाप्रभु जब भक्त देखते थे तो उनके एक मुंह नहीं, एक जीवा नहीं, हजारों जीवाएं बन जाती थी, हजारों मुख, और वो प्रशंसा करने लगते थे, गुणगान करने लगते थे भक्तों की महिमा का। तो जब वासुदेव को देखा, उन्होंने वासुदेव जो भक्त थे उनका गुणगान करना शुरू किया उनकी महिमा का, तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कोई भक्त हमारा गुणगान करे तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं कितना अच्छी सेवा करता हूँ, कितना बड़ा डिवोटी हूँ, ये सारे बेकार अनाड़ी गवार है कहाँ के, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, ये भावना भी नहीं होनी चाहिए। हमें जैसे वासुदेव की प्रशंसा हुई, उनको लज्जा महसूस हो गई, क्योंकि भक्तों को प्रशंसा कांटों के समान क्या होती है, चुभती है। और जो भक्त नहीं है उनको प्रशंसा कैसे लगती है, गुलाब के फूल के समान। हा? तो यहाँ वासुदेव की प्रशंसा हो रही थी, तो ये वासुदेव तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं लज्जावश, और वो कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, बस बस बस, हाँ मेरा एक निवेदन है आपके चरणों में। हाँ, भगवान के चरणों में वो गिरते और एक रिक्वेस्ट कृष्ण को करते हैं। वो कहते हैं, जगत तारिते प्रभु तुम्हारा अवतार, मोर निवेदन एक करह अंगीकार। उन्होंने कहा, आपका अवतार तो सारे जगत का उद्धार करने के लिए हुआ है, तो आपके चरणों में मैं एक निवेदन करता हूँ, उसको आप स्वीकार कीजिए। तो उनका निवेदन क्या था, करिते समर्थ तुम्ही हो दयामय, तुम्ही मन करतबे अनायसे हाय। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो, और यदि आप चाहें तो बड़े से बड़े कार्य भी आसानी से कर सकते हो। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा हो, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कठिन कार्य भी बहुत आसान हो जाता है, और यदि हमारे ऊपर कृपा नहीं है तो आसान से आसान कार्य भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। हमें लग सकता है कि मेरे पास बहुत योग्यताएं हैं, ये कार्य तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन नहीं, किसकी कृपा होनी चाहिए, भगवान की और उनके भक्तों की। अब सोचो, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना सरल कार्य है या कठिन कार्य है? कितना आपको कुछ मुंह से तो बोलना है और माला हाथ से हिलानी है, लेकिन हम कर पाते भगवान का नाम नहीं? एक तो सबसे पहले हमारी इच्छा नहीं है, सबसे पहले क्या नहीं है, भगवान का नाम उच्चारण करने की हमारी इच्छा नहीं है, और ये इच्छा न होने के कारण भगवान के हमारे ऊपर भी कृपा नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे, उन्होंने कहा, जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे। अब देखो, ये एक उन्नत भक्त का मनोभाव है। उन्होंने कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, इस संसार के जीवों के दुखों को देखकर मेरा हृदय फट रहा है। क्या हो रहा है, मुझे कल से दो तीन भक्तों ने बड़ा दुखी होकर कहा कि पाकिस्तान में एक स्कूल में कई सारे बच्चों को क्या किया गया, मारा गया। तो मतलब भक्त भी ऐसे नहीं कि उनको फीलिंग नहीं है। तो इस संसार में हजारों हजारों घटनाएं हो रही हैं, हम निरंतर सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस संसार में रहना ही चाहते हैं। तो यहाँ वासुदेव दत्त कहते हैं कि हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, इस संसारिक जीवों के दुखों को देखकर मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग सुखी हो जाए, तो इनका जो सारा पाप है वो क्या करो, मेरे ऊपर दे दो। दुख क्यों है जीवन में, क्यों? क्योंकि पाप, हमारे पाप राशि बहुत है लाइफ में, पाप का जो संचय है, पापों का जो रिजल्ट है वो दुखों के रूप में हमारे जीवन में कंटिन्यूअसली आता रहता है, और मृत्यु तक आता रहता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि इस बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर मैं दुखी हो रहा, मेरा हृदय फट रहा है, इनके पाप आप मुझे दे दो। जीवेरा पाप लैया मुई करो नरक भोग, सकल जीवेरा प्रभु गुचा भव रोग। तो उन्होंने कहा, सारे जीवों के पाप मुझे दे दो और मुझे नरक में भेजो, लेकिन इन सबको कहाँ भेज दो, आपके वैकुंठ धाम ले जाओ। तो ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के हृदय की भावना है। यही भावना श्रील प्रभुपाद की थी। प्रभुपाद भारत को छोड़कर अमेरिका जाते हैं केवल दूसरे जीवों का उद्धार करने हेतु। जब उनके ये वचन सुने तो चैतन्य महाप्रभु आज तक कभी रोए नहीं थे। महाप्रभु कृष्ण के लिए रोए होंगे, लेकिन एक भक्त की ऐसी अमेजिंग प्रार्थना और हृदय का जो मनोभाव था, चैतन्य महाप्रभु पहली बार रोने लगे। एतश्रुणी महाप्रभु चित्त द्रविला, अश्रु कंप स्वर भंगे कहिते लागिला। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय बिल्कुल द्रवित हो गया और चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे वसुदेव, आज इतनी बड़ी आकांक्षा तुम्हारे हृदय में, सारे जगत के कष्ट तुम ही स्वीकार करना चाहते हो, और ये भावना कि दूसरे सुखी हो जाए। अभी सोचो, हमारी साथ ऐसी स्थिति नहीं है, हमें हमारा कोई मोबाइल भी मांगे कुछ समय के लिए तो भी हम देने के लिए तैयार नहीं है। तो लेकिन यहाँ महाप्रभु ने जब देखा कि इतना बड़ा जो भावना है, तो चैतन्य महाप्रभु गदगद होते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये कोई विचित्र नहीं है, क्योंकि तुम साक्षात कौन हो? प्रहलाद हो। हाँ, जो नरसिम्हदेव जिनके लिए प्रकट हुए थे वो कौन थे? प्रहलाद। वही प्रहलाद चैतन्य महाप्रभु की लीला में वसुदेव के रूप में आते। तो ऐसे प्रहलाद का जो हृदय था वो भी इनके समान ही था, क्योंकि भगवान जब नरसिम्हदेव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा आपको मेरे साथ ले चलता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा मैं कैसे आ सकता हूं आपके साथ हे नरसिम्हदेव, क्योंकि नरसिम्हदेव को वो कहते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, कि मेरा जो जन्म है एक ऐसे कुएं में हुआ था जहां सांप ही सांप निवास कर रहे थे, और सांप जहरीले और ईर्ष्यालु होते हैं, तो उन्होंने अपने परिवार की तुलना सांपों से की है, उनके पिता, उनके भाई और इन सब की। और उन्होंने कहा मैं गिरा हुआ था ऐसी कुएं में जहां से आपके भक्त नारद ने मुझे उठा लिया, और अभी मैं इस स्थान में हूँ, एक भक्त बना हूँ और आपकी सेवा में हूँ। इसलिए वो कहते कि मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य कुछ है तव भृत्य सेवा, मेरा पहला ड्यूटी क्या है, आपका जो भक्त जिन्होंने मुझे भक्ति में भक्त बनाया है उनकी सेवा करना, क्योंकि वो आपकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नारद को असिस्ट करना, क्योंकि नारद आपकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, उनकी सेवा छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता। तो ऐसे प्रहलाद का हृदय था। प्रहलाद ने कहा कई ऐसे ऋषि मुनि साधु महात्मा होते हैं, उनको अपने उद्धार की चिंता रहती है, अपने मोक्ष प्राप्ति की चिंता होती है, इसलिए वो सामाजिक लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है, शहर आदि में निवास नहीं करते, वो एकांत में चले जाते, हिमालयाज में चले जाते, मौन व्रत धारण करते हैं, स्व विमुक्ति कामा, अपनी मुक्ति की कामना रखते हैं। कहते उनसे बढ़कर जीव कौन है जो आपके जीवों को कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रहलाद कहते कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता उन लोगों की है जो आपसे विमुख हो गए हैं, आपके भक्ति में नहीं लगे, उन लोगों की मुझे अधिक चिंता है, क्योंकि मुझे इस संसार का भय नहीं लगता। हमें इस संसार का भय क्यों है? क्योंकि हमें एक चीज की कमी है, हमने एक कला सीखी नहीं है कृष्ण का गुणगान करने की, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला। प्रहलाद कहते कि मेरा मन इन चार चीजों में इतना डूबा हुआ है कृष्ण, कि इस संसार की मुझे भय नहीं है, इसलिए वो चाहते कि ये जो जीव है ये भी इसमें डूबे। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु वसुदेव को कहते हैं कि तुम वास्तव में क्या हो? प्रहलाद हो। और वो आगे कहते हैं कृष्ण से ही सत्य करे जय मागे भृत्य, भृत्य वांछा पूर्ति विनु अन्य नाही कृत्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण तो वही करते हैं जो उनका भक्त चाहते हैं। कहते कृष्ण के पास करने के लिए दूसरा कार्य ही नहीं है, उनके पास एक ही बिजनेस है, जो उनके भक्त के डिजायर है वही कृष्ण दिन रात करते रहते। इसलिए देखो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, जब नारद मुनि ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने देखा कुबेर के जो धनी पुत्र हैं वो नग्न होकर अप्सराओं के साथ मंदाकिनी रिवर में स्नान कर रहे थे। नारद वहां से गुजरते तो भी उनको कोई लज्जा नहीं है। नारद ने कहा ऐसा वर्तनुक आप उचित है कि आप पेड़ बनो, तो वो बिल्कुल शरणागत हो जाते हैं। और महा नारद कहते हैं कि आप पेड़ बनोगे तो कहाँ बनोगे? नंद महाराज के आंगन में, भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो अभी भगवान को नया सेवा किसने दे दिया? नारद ने दे दिया। वहां माता यशोदा ने उनको बांधा, तो बांध के एक जगह खड़ा होना चाहिए ना, बैठना चाहिए, लेकिन नारद ने इतना सेवा दिया था कि ये जो वृक्ष के रूप में उनको भी उद्धार करना है, तो बेचारे कृष्ण वो पूरा रूखल है वो खींच खींच के लेके आए और वृक्षों के बीच में जाकर उन वृक्षों का उद्धार किया। तो मतलब यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान का सेवक है वो जो इच्छा करते हैं उनकी इच्छा पूर्ति करने के अलावा कृष्ण के पास दूसरा कार्य नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त की जो डिजायर है वो भगवान की इच्छा से भी अधिक क्या है, शक्तिशाली है। ऐसे हजारों उदाहरण है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की आज या तो कृष्ण को हथियार उठाने पड़ेंगे या फिर क्या करना पड़ेगा, अर्जुन या पांडवों किसी को मरना पड़ेगा। तो भगवान ने उनकी प्रतिज्ञा वचनों को रखने के लिए क्या किया, अस्त्र उठा लिया, एक प्रकार से चक्र या चक्का उठा या पहिया उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से वसुदेव जब प्रार्थना कर रहे थे, वासुदेव दत्त, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी इस प्रार्थना से गदगद हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण को कुछ कार्य नहीं है कि वो आपको सारे जगत का जो पाप है वो प्रदान करेंगे, बल्कि कृष्ण अपने जिन जो इच्छा की है, वैष्णव इच्छा करे कि ये व्यक्ति भक्त बन जाए, तो कृष्ण ऐसी योजना करते हैं कि वो व्यक्ति क्या बन जाता है, डिवोटी बनता है। इस प्रकार से वासुदेव दत्त को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण तुमने इच्छा की है कि सारे ब्रह्मांड के लोग वैकुंठ चले जाएं, तो निश्चित रूप से सारे जीव चले जाएंगे वैकुंठ, और कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये वैकुंठ, ये जो ब्रह्मांड है ये खाली हो जाए। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ी लीला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त का ये जो मनोभाव है कि सदैव ये भावना भावित रहता है कि कैसे दूसरों का हित हो, और ये महीना उसी के लिए है। किस चीज के लिए है, दूसरों का हित करने के लिए है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते परहिते रता, दूसरों के हित के लिए रत रहता है डिवोटी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। तो कृष्ण की सेवा करने का जो मौका मिलता है तो हमें अपना मन वाणी शरीर सब कुछ लगाने का प्रयास करना चाहिए, उसमें हमारा हित है। नहीं तो ये शरीर मन वाणी कालांतर में खत्म होने वाला है। ये जीवा यदि कृष्ण के बारे में बोलेगी नहीं, कृष्ण का गुणगान नहीं करेगी, तो मृत्यु के समय में घर के लोग आग लगाएंगे ना, जब मरता है व्यक्ति तो आग कहाँ लगाते हैं, मुंह में आग डालते हैं। ये गीत है वैष्णव की जिसमें कहते हैं कि उस समय जीवा जलाई जाएगी, ये जीवा को खोलो और जोर जोर से बोलो क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विशेष मंत्र है। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रांस में एक माताजी थे जिन्होंने पूरा ऐसा बैग भरा भगवद गीता पुस्तकों से और कृष्णा बुक से, और वो एक ट्रेन में चली गई पुस्तक वितरण करने के लिए। आप गए ट्रेन में पुस्तक वितरण करने, आप में से कोई गया है? उसने बैग भरा उस माताजी ने, और पेरिस में जो ट्रेन जा रही थी उसमें चढ़ गई, और पुस्तक वितरण करते करते अचानक एक स्थान में पहुंची जहां वो उसके हाथ में कृष्णा बुक था, और कृष्णा बुक ऐसे दिखाई रही थी, तो एक एक हट्टा कट्टा व्यक्ति वहां सामने आके खड़ा हो गया उसके, और जैसे इसने वो बुक दिखाई उसको बहुत गुस्सा आया, उसने उस माताजी को केवल मारना शुरू किया। क्या किया अब सोचो, मारना शुरू किया, और वो कृष्णा पुस्तक ली, नीचे डाली और उसके ऊपर नाचने लगा, उस पुस्तक के ऊपर अपने शूज से पांव से उस पुस्तक को रगड़ने लगा, और वो जो स्त्री है ब्लड निकल रहा था, वो कृष्ण को प्रार्थना कर रही थी कि कृष्णा आप क्या करो, इस व्यक्ति को भक्त बनाओ, इसको क्षमा कर दो, ये व्यक्ति नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। और वो थोड़ी देर के बाद स्टेशन आता है, वो उतर जाती है, इसने वो पुस्तक उठा लिया अपने साथ, इसको लगा घर जाके पत्नी को बताता हूं कि आज मैंने क्या पराक्रम किया है। वो गया घर में, होता है ना पति जब ऑफिस से आता है दिन भर पराक्रम आके घर में बताता है, तो फिर गया और वो बैठी थी डाइनिंग टेबल पर, जाकर ऐसी पुस्तक को फटी हुई डाइनिंग टेबल पर फेंकी, उन्होंने कहा देखो आज मैंने क्या किया है। तो ऐसे बहुत वार्तालाप किया, वो पुस्तक वहीं डाइनिंग टेबल में कोने में पड़ी रही ऐसी फटी हुई, और इसकी बेटी और जो पुत्र है ये सब भोजन खा के कहां नून में चले गए, तो नौकरानी आई सफाई के लिए, तो नौकरानी सफाई कर रही थी तो उसने देखा डाइनिंग टेबल में, अरे ऊपर से तो बड़ा अच्छा चित्र है, हाँ ये पुस्तक उसने देखा लेकिन ये फट गई है पूरी, तो उसने क्या किया उसको लगा कि ये तो घर में बच्चों ने फाड़ दी होगी किताब, उस नौकरानी ने ग्लू लेके आ गई और उसको चिपकाने लगी, चिपकाया ठीक ठाक किया, थोड़ा साफ सुथरा किया और कहाँ जाके रख दिया, हाँ उनका जो बुक शेल्फ था उसमें जाके रख दिया। अभी इसका रिएक्शन क्या हो गया कि इस व्यक्ति ने इतना अपराध किया था कि एक साल के बाद, एक दो दो साल के बाद, दो तीन साल के बीच में उसके पत्नी को जानलेवा बीमारी हो गई, जिसके कारण पत्नी का देहांत, बेटी किसी और के साथ भाग के चली गई और पुत्र एक्सीडेंट से मर गया। अभी कौन रह गया घर में, अकेले। और वास्तव में हमें हमेशा सोचना चाहिए कि संसार में मैं क्या हूं, अकेला हूं, क्योंकि भगवान कहते हैं अशाश्वतम दुखालयम। अभी हम हमेशा सोचते कि नहीं मेरे पास मेरा साम्राज्य है, घर में रहते तो हम सोचते ना मैं घर का राजा हूं, और आपकी प्रजा कौन है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुत्ते हैं, घर का साज सामान है, तो ये सोचते कि मेरी प्रजा है। लेकिन राजा को पता नहीं है कि ये प्रजा आपके पास हमेशा के लिए नहीं है। तो वैसे ही इसने देखा कि ये तो सब ऐसे हो गया कि जैसे कोई स्वप्न में आ जाता है। हाँ तो ये इस बहुत दुखी था, इसने सोचा बस अब ये कष्ट से मुक्त होना है तो बस आत्महत्या करनी चाहिए। एक ही विचार आता है ना व्यक्ति को, बहुत चिंता होती है तो सोचते सबसे सरल सॉल्यूशन है सुसाइड करो। तो उसने सोचा आत्महत्या करना है तो चलो अभी ये मरना ही है तो मरने से पहले कुछ अच्छा काम करता हूँ। हम सोचते ना कभी कभी कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत सारा पाप कर लिया, और अच्छा काम क्या सोचा उसने, उसने सोचा मरने से पहले बाइबल पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, अभी वो गया अपने बुक शेल्फ में, वहां नास्तिक है तो बाइबल भी नहीं रखी थी उसने घर में, तो वो ऐसे बुक ढूंढ रहा था तो कौन सी बुक मिली उसको, ये कृष्ण, इसको लगा ये धर्मी, वो भूल गया कि वो लेके आया था। वो बुक उसने उठाई और रात भर उस बुक को पढ़ा, पढ़ते गया सुबह हो गई और उसने वो संवाद पढ़ा जब वसुदेव और कंस के बीच में, जब किसको मारने के लिए तैयार था वो, देवकी को, उसमें जब आत्मा का वर्णन हो रहा है, टेम्पररी लाइफ का वर्णन हो रहा है, बहुत अच्छा संवाद है। तो ये सब ऐसे पढ़ रहा था, काफी बुक पढ़ा उसने, आधे से ज्यादा पूरी रात। तो फिर सुबह ढूंढने लगा एड्रेस, हाँ लिखा था इस्कॉन पैरिस, जहाँ राधा कृष्ण है, पैरिसेश्वर। तो जब वहां मंदिर गया उसने कहा मुझे ना आपका मंदिर फुल टाइम भक्त बनना है। तो मंदिर के भक्त अध्यक्ष ने कहा यहाँ भक्तों की तो हमेशा आवश्यकता रहती है तो आप ज्वाइन करो। तो उसने वो गया और मंदिर में रहने लगा, हरि नाम का जप करने लगा, सेवा करने लगा, प्रसाद ग्रहण करने लगा, और उसको सेवा मिली। कौन सी सेवा मिली, पुस्तक गोडाउन का इंचार्ज। और फिर अभी भी वो भक्त है। तो ऐसे कुछ महीने बीते हैं, हाँ तो वहां के जितने भी मंदिर थे उनका एक महामिलन था पुस्तक वितरक भक्तों का, तो ये भी गया उसमें, वहां प्रोग्राम था तो वहां गया। तो उसको वो माताजी भी वहां आए थे, वो माताजी नजर आई, उन्होंने कहा अरे यही तो वो माताजी थे। जाता है और उसके चरणों में क्या करता है, दंडवत करता है कि आपने मेरा जीवन बदल दिया है। वो माताजी सोचते क्या, हाँ इसको देखा हुआ लगता है कहा। तो फिर वो बताता है कि सारी घटना बताता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में वो जो माताजी थे उसकी क्या थी, ये प्रार्थना थी, और दूसरा प्रभुपाद के ग्रंथों का क्या है, ये चमत्कार है। हम केवल दे, कई बार हम सोचते अरे कौन नहीं, कोई नहीं पढ़ता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बुक्स पढ़ता नहीं ना उसको हमेशा लगता है कि दूसरा भी नहीं पढ़ता। आत्मवत मनने ते जगत, अपने सामान्य हम दूसरों को क्या करते हैं, समझते हैं। इसलिए यदि हम पढ़ेंगे अच्छे से तो ये कन्विक्शन होगा कि दूसरे लोग भी इस ग्रंथों को पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं, लोग भक्त बन रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, हम खुद नहीं पढ़ते, इसलिए हमें लगता है कि संसार में कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक ये पढ़ेगा नहीं। तो इसलिए अभी कुछ और दिन है पुस्तक वितरण के, तो आप जितना भी आपने कोटा लिया है पुस्तक वितरण करने का, और नहीं भी लिया है तो लीजिए और भी, और पूरा साल कर सकते, कम से कम इस महीने में तो करिए, है ना। कृष्ण की आंखें ऐसी बड़ी हो रही है, जैसे जैसे महीना एंड हो जाता है ना, तो कृष्ण की आंखें क्या होती है, बड़ी होती है, और उस लेंस से कृष्ण देखते हैं भक्त को, क्लोज देखते हैं, हाँ, जो जितना प्रयास करता है। तो रिजल्ट हो या ना हो, लेकिन हमें सिंसियरली प्रयास करना चाहिए, तो कृष्ण की कृपा हम अनुभव करेंगे। हरे कृष्णा, तो लाउडली चांट करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।